दो बातों पे चर्चा कल की मुरली से। पहली बात थी, बोलो किसको याद है, श्रेष्ठ भाग्य तीन तरह का, और शिक्षाओं की बात थी अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तित करो। और कुछ किसी को याद आती हो तो बताओ, फुल स्टॉप लगाना है। दूर हैं आप, खड़े हो जाओ। हिम्मत करेंगे तो क्या बोल रहे दुर्गा बहन, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। देखो, सबसे पहला भाग्य हम सबको भगवान मिला। लोगों की कल्पनाओं से भी बाहर कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह भगवान मिलता होगा, और मिलता भी किस भाव से है, बाप और बच्चे। ये नहीं मैं बहुत बड़ा और तुम बहुत छोटे, मांग लो क्या चाहिए। भगवान मिला अपनी महान आत्माओं को, तीन रूप में मिल गया, परमपिता, शिक्षक और सद्गुरु। माता पिता की पालना का बड़ा महत्व है किसी भी मनुष्य के लिए। बहुत माता पिता बैठे हैं लौकिक वाले, आप अपने बच्चों की जैसी पालना करेंगे वैसा ही उनका पूरा जीवन होगा। पालना केवल खिलाने पिलाने की नहीं होती, कई खिला पिला तो अच्छा देते हैं, लेकिन दूसरी पालना नहीं करना जानते। क्योंकि किसी भी माँ को पालना क्या होती है इसकी तो कहीं ज्ञान नॉलेज एजुकेशन दी नहीं जाती। और आजकल जबकि बहनें जॉब में बहुत जाने लगी हैं तो कैसा लाइफ हो जाता है बताओ, जॉब वाले भाग दौड़ थकाने वाला, इरिटेट करने वाला, और ऑफिस में किसी ने डांट डपट की हो, वो सब साथ लेके बच्चों के पास आते हैं, कैसी पालना होगी। मात पिता बनकर भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, अब विचार करें। मुझे एक बात पहले से ही बहुत प्रिय लगती थी, किसी की पालना गरीब घर में होती है। सब कुछ सोचते हैं माँ बाप, पढ़ाएं कहाँ पढ़ाएं, पैसा कम है, बीमार हो गया, दवाई के लिए पैसा नहीं है, कितनी बातें होती हैं। किसी की पालना थोड़े अच्छे घर में हुई, सब कुछ सहज होता है। किसी की पालना साहूकार घर में हुई और अच्छा। कलयुग की बात अलग, यहाँ तो लोग बिगड़ जाते हैं पैसे के कारण। और किसी की पालना राजाई परिवार में होती हो, सोचो कैसे संस्कार भरते हैं। पहले राजाओं के पास गुरु ही अलग होते थे, जो राजकुमार राजकुमारियों को अच्छे संस्कार सिखाते थे। अब वो चीजें नहीं रही, तो बहुत बड़ी पालना माता पिता के रूप में बाबा की हमें मिल रही है। प्यार भी बहुत, प्यार का सागर। प्यार दे देकर क्या कर दिया बाबा ने, बोलो, अपना प्यार देकर क्या कर दिया, सोचो। मैं तो बहुत सारी बात बता दूं, पर मैं आपको जरा जगाना चाहता हूं, पता हो आपको। प्यार देकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी, प्यास बुझा दी। प्यार देकर हमें विकारों से मुक्त बनने के लिए तैयार कर दिया। साकार मुरलियों में बाबा का प्यार झलकता है। आप अगर बाबा के शब्द सुने ओरिजिनल, बाबा जब थे तो क्या था कि ये टेप रिकॉर्ड अच्छे साधन जैसे आज हैं ये नहीं थे। साइड में रखा जाता था, वो एक माइक्रोफोन बड़ा सा होता था, स्टैंड भी नहीं था, तो कितनी आवाज़ कैच करेगा वो। तो बाबा की बात अगर आप सुने बाबा के शब्दों में, कुछ मुरलियाँ तो है ना रिफाइन की है, उन्हें थोड़ा क्लियर किया है, लगता है कितना प्यार से बात करता है बाबा, कितने प्यार से हमें समझाता है, एक एक चीज कहता है, डांट के नहीं। कभी सुना कि मैंने तुम्हें हजार बार कहा ये न करो फिर भी करते हो, अब तुमसे बात नहीं करूंगा। घर में तो माँ बाप पांच तीन चार बार कह के फिर डांटने लगते हैं, सुधरता नहीं है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। कभी नहीं कहा बाबा ने। मैं सोचा करता था बाबा धैर्य के भी सागर हैं, ये उनके गुणों में लिखा नहीं जाता कहीं, धीरज यही बच्चे बने थे यही बनेंगे। फिर बाबा कहता था और कहीं से थोड़ा ही मैं लाऊंगा, तुम ही तो हो मेरे, तुम्हें ही बनना है। तो प्यार की पालना, दृष्टि की पालना, अच्छी अच्छी बातें सिखाने की पालना और खिलाने पिलाने की पालना बहुत रखी बाबा ने, उसमें कमी नहीं छोड़ी। हमने देखा जब से मैं आया तब भी एक बहुत साधारण ही था, लेकिन खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं, अच्छे से अच्छा माल बन रहा है, और चीजों में इकोनॉमी बहुत, खिलाना पिलाना बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छी पालना भगवान की ओर से हमें मिली है, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। शिक्षक के रूप में पालना, और थोड़ी गहराई की ओर चलें, संपूर्ण ज्ञान दे दिया, कुछ रहस्य जानना बाकी नहीं रहा। सृष्टि में पतन कैसे कैसे हुआ धीरे धीरे, प्रकृति में गिरावट कैसे आई धीरे धीरे, उत्थान कैसे होगा, तुम आत्माएं कौन हो, स्वमान का ज्ञान दिया। दुनिया में भारतीय दर्शनों में वेदों में इतना भी अगर हो गया तुम आत्मा हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान है, पर बहुत थोड़ा है वो। बाबा ने कितना गहरा ज्ञान दिया। तीन चार दिन पहले बाबा कह रहे थे गुरुओं को तो मेरे धाम का ही पता नहीं, ले कहाँ जाएंगे तुम्हें। भाई गुरु हमें ले जाएगा, सदगति करेगा, उन्हें तो पता ही नहीं कहाँ ले जाना है। तो कितना क्लियर ज्ञान, घर तुम्हारा कहाँ है, देवलोक क्या था, स्वर्ग के बारे में तो कितनी भ्रांतियां हैं शास्त्रों में, किसी को क्लियर ही नहीं स्वर्ग क्या होता है, और स्वर्ग में हम भी थे क्या देवता रूप में, इसका तो अंदाज ही नहीं है। तो बहुत सुंदर पालना हो गई पढ़ाई की। सबने पढ़ा है लौकिक में, आपको अच्छे स्कूल में एडमिट करा दिया गया हो, अलग होता है ना सब कुछ, आपको अच्छे टीचर मिल गए हो और सुंदर बात होती है, और ऐसे टीचर मिल गए हो जिनको पढ़ाने की कला ही ना हो, डांट डपट करने वाले, मारपीट करने वाले, अलग इफेक्ट। देखे आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे। तो बाबा ने स्वमान देकर पढ़ाया है, बहुत बड़ी पालना। हम सोए हुए थे, हमारी चेतना सो गई थी, उसे जगा दिया है। तुम कौन हो, देखो आते ही कल भी पहली लाइन क्या थी, बाबा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे, आते ही जगा देता है हमें, ऐसे वैसों को नहीं देख रहा हूं, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाबा का ही करते हैं। बोली बोली माताएं भी, बिना पढ़े लिखी माताएं भी, उनके पास एक बहुत बड़ी बुद्धि तो थी ना, कौन सी? भगवान को पहचानने की। जो विद्वान बड़े बड़े पीएचडी किए हुए, बड़े बड़े डिग्री लिए हुए, नहीं समझ पाए, उसको देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, बोली बोली माताएं उसको जान पाई, उसे नाता जोड़ लिया। कल बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा, अधिकार की बात आ गई। तो कितनी सुंदर पालना मिली हमें, बदलते गए बाबा दिनों दिन, हमारा जीवन बदल दिया। ये कोई छोटी पालना नहीं, इसको सभी समझें। गाइड किया है कदम कदम पर, सदगुरु के रूप में भी यही हुआ, हमें राह दिखाई। वरदान तो दिए ही हैं, पर हमें राह दिखाई, अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया है, परम सदगुरु की दृष्टि हमें मिली है, कदम कदम पर कैसे चलना, क्या सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे तुम्हारे कर्म हो, ये सब बता दिया। तो शिक्षक और सदगुरु दोनों के रूप से हमारी बहुत जबरदस्त पालना की है दोनों ने की है, एक ने नहीं की, दोनों ने की है। इसलिए हम बहुत भाग्यवान हैं या नहीं, बहुत भाग्यवान है। छोटी मोटी बातें जो जीवन में होती हैं, परिवारों में होती हैं, काम धंधों में होती हैं, उन सब में उलझ कर ये भुला नहीं देना है कि हम बहुत भाग्यवान हैं। मैं एक रहस्य बहुत समय से बताता आया, जब से मैंने बाबा की मुरली से ये सुना, अगर हम उठते ही, दिन में भी लेकिन उठते ही, सच्चे मन से याद करेंगे मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तो भाग्य चमकता ही जाएगा। इस एक संकल्प में बहुत बड़ा जादू होगा, भाग्य चमकने लगेगा। और कोई बार बार सोचता रहे मेरा तो भाग्य खराब है, तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? माताएं बहुत हैं, बोलो, जगो जरा, जगो। आज से शुरू है भट्टी या पूरी हो रही? आज पहला दिन है। याद करो, मेरे जैसा भाग्यवान, बिल्कुल भूल से नहीं कहना कि मेरा भाग्य तो बहुत खराब है। कह देते हैं गुस्सा करके, सफलता नहीं मिलती, बाधाएं आती हैं, बाबा भी कुछ नहीं करता, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, भगवान भी रूस गया हमसे, तो वो किसी से रूसता ही नहीं, रूसते तो बच्चे हैं। कल सब कहा ना, एक जैसा पढ़ाता है, एक जैसा प्यार देता है, सब समान है, नंबर हम बनाते हैं। अब हमें अपने भाग्य को बढ़ाना है बहुत। सबको ये क्लियर रहे, भाग्य कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है। आपको एक सबसे सूक्ष्म बात सुना देता हूँ बाबा की, जो एक ही बार उन्होंने बोली है और मैंने नोट कर ली थी, तब से बुद्धि में भी और कागज पे भी, दोबारा नहीं आई है वो बात, नोट कर लो जो बहुत अच्छे चिंतक हैं। संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। जितने जिसके पास श्रेष्ठ संकल्प हैं, उतना ही उसका भाग्य ज्यादा है। माता इधर भी बैठ सकती है भाइयों की तरफ, पीछे वाले सुनले में बैठा दो, जगह भर गई हो, इधर बैठ जाए, भाई थोड़े आगे आ जाओ, पीछे वाले आगे आ जाओ, खाली कर दो। तो श्रेष्ठ संकल्पों की एनर्जी, अब आगे सोचें इस पर। हमारे मन में संकल्प जितने कम होते हैं, जो बाबा फुल स्टॉप की बात करते ही रहते हैं, मन में जितने कम संकल्प होते हैं उतना ही मन पावरफुल होता है। मन पावरफुल माना आत्मा पावरफुल, उतना ही भाग्य श्रेष्ठ बनता है। इसलिए बहुत बड़ा काम आने वाले समय में वो आत्माएं करेंगी जो व्यर्थ से मुक्त हैं, और ये काम अपने हाथ में है। कईयों के हाथ में नहीं है, मैं देखता हूं बहुत लोग आते हैं, व्यर्थ ज्यादा ही चलने लगा है, पहले नहीं चलता था। हमने ज्ञान के 10 साल बहुत अच्छी तरह बिताए, एंजॉय किया, अब पता नहीं क्या हो गया, ज्यादा ही विचार चलते हैं, क्या चलते हैं ये भी पता नहीं, ज्यादा ही ज्यादा। भाई कोई उधर रहे, माताओं को कहे इधर आओ, एक पीछे बहन ध्यान दे जरा, कोई भी इधर भेजती रहे माताओं को, नहीं आप तो आ ही रहे, किसी को उधर लगा दो भाई, छठलाल देखना, उधर एक को कह दो इधर भेजती रहे, नहीं तो माताएं टाइट बैठती रहती हैं। तो हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना है। दूसरी बात, तन मन धन की सेवा भाग्य का निर्माण करती है। बाबा ने एक अव्यक्त बोली में एक बात कही कि जिसने कभी बाबा के कार्यों में मदद भी की है, विनाश काल में प्रकृति उसे भी मदद करेगी। सबसे छोटी बात कही है, जो बिल्कुल कभी कभी मदद कर देते हैं, और जो बहुत मदद करते हैं, सोचो आप सब बहुत मदद करने वाले हो ना, बहुत मदद करते हैं, बाबा के कार्यों को सफल करने में बहुत कुछ करते हैं, बहुत भाई बहने हैं, उनको प्रकृति बहुत मदद करेगी। इसलिए तन मन धन से सहयोग करके अपने भाग्य को बढ़ाते चलें। जो दूसरों का भाग्य बनाएंगे, जो दूसरों को भगवान से मिलाएंगे, जो दूसरों को राह दिखाएंगे, दूसरों को स्थिति बढ़ाने में मदद करेंगे, उनका भाग्य भी बढ़ता जाएगा। ठीक बात है ना, दूसरों को मदद करना, और जो इसके विपरीत करेंगे उनका अपना भाग्य डूबता जाएगा। तो हमें एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनकर उन्हें सहयोग भी देना है। बाबा कहा करते थे, अव्यक्त में भी कहा एक दो बार, किसी की पवित्रता को बचाना बहुत बड़ा पुण्य है। माताएं और बच्चों के बारे में कहा है ये। कई माताओं को इच्छा होती है, हम तो ज्ञान में चल रहे, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, होती है या नहीं माताओं को? लज्जा ना करो, मैं जानता हूं आप नहीं बोलेंगे तो मुझे पता है, होती है या नहीं? बहू का मुंह देख लूं मन शांत हो जाए, और बहू जब लड़ाई करती है तो मुंह देखना ही नहीं चाहती इसका, ऐसा हाल हो जाता है। दूसरों की पवित्रता की रक्षा करना, भाई लोग हंसते हैं जब मैं ऐसी बातें कहता हूं, क्योंकि ये समस्या आजकल माताओं को ज्यादा हो रही हैं। मैं शादियों की समस्या बहुत बढ़ गई है पिछले 5-7 सालों से, ज्यादा नहीं 10 सालों में तूफानी बनती जा रही है मैरिज की समस्या। क्योंकि सभी के संस्कारों के टकराव हो रहे हैं, कोई भी अपने को बदलना नहीं चाहता, झुककर कोई चलना नहीं चाहता, मिलाना कोई नहीं चाहता, मैं बड़ा मैं बड़ी ये रहता है तो झगड़े होते हैं, परिवार दुखी होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है समाज में, इसे बीमारियां बढ़ रही हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मैं माताओं को एक चीज कहा करता हूं, कह दू क्लास में, आपकी बच्ची की यदि शादी हुई है, बहुतों की बच्चियों की हुई होंगी, उनको फोन पे ज्यादा गाइड ना करो। अच्छी गाइडेंस देना तो अच्छी बात होती है, समझ गए कैसे गाइड ना करो, थोड़ा खराब। डरना नहीं किसी से, हम बैठे हैं, अब हम तो बैठे हैं लेकिन हम तो अपने घर में बैठे हैं ना, उसका घर दूसरा है। थोड़े अच्छे संस्कार देते चलो, फोन का फायदा उठा लो, फोन शत्रुता बनाने वाला ना हो जाए, फोन तोड़ने वाला ना हो जाए, फोन परिवारों को जोड़ने वाला हो जाए। और ये मात्र शक्ति में ताकत है, वे परिवारों को जोड़ सकती हैं, टूटो वो को भी जोड़ सकती हैं, सभी भट्टी से। ऐसी सुंदर चीजें सीख कर जाना कि हम टूटे हुए को जोड़ेंगे, जुड़े हुए को तोड़ेंगे नहीं। सभी को ख्याल करना है, हम मित्रों की संख्या बढ़ाएंगे, मित्रों की संख्या बढ़ानी है, इसलिए हमारा व्यवहार, हमारी सीख बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोचने की बात है, कल मेरे पास ऐसे ही माँ और बेटी आए, अच्छे परिवार के, लड़की की शादी हुई, मिलिट्री ऑफिसर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सास ससुर कहते हैं हम इसे रखेंगे ही नहीं। देखो क्या हिसाब किताब कर्मों का। अब वो लड़की 3 साल से घर में है और अब जज की जो होती है ना कंपिटिटिव एग्जाम, उसकी तैयारी कर रही है, मेरे से पूछने आई थी, अब क्या करूं मैं, ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं, जज बनूं, क्या करूं, अच्छी पढ़ी लिखी। तो देखो बिना मतलब लोग समस्याएं पैदा कर लेते हैं ना, थोड़ा मिलन करना है। हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान के पास आ गए। भक्ति में एक गीत है, शरण पढूं तेरी, शरण पढूं नहीं, उसने प्यार से अपनी शरण में ले लिया है, अपनी छत्र छाया में ले लिया है, ले लिया है या नहीं, हम उसकी छत्र छाया में आ गए हैं, बहुत बड़ी सुरक्षा। देखो विनाश के छोटे छोटे सीन संसार के लोगों को भयभीत कर रहे हैं, किया या नहीं कोरोना ने, बहुतों को भयभीत कर दिया, लेकिन बाबा के बच्चे, बहुत बच्चे स्ट्रांग रहे, ये पालना का प्रभाव है ना। अभी भी युद्ध हो रहे 2 देशों में, रशिया धमकी देता रहता है एटम बम की, डरते हैं ना, एटम बम माना बहुत खतरनाक चीज है, भय पैदा हो जाता है, लेकिन बाबा के बच्चे, बोलो बोलो बाबा के बच्चों, मस्त रहते हैं, मरेंगे तो भी तुम्हारे पास जाएंगे, जिंदे हैं तो भी तुम्हारे पास हैं, हैं या नहीं, हाय मैं क्यों मरूं अभी, मेरा नंबर तो भी नहीं आना चाहिए, अभी तो मैंने दुनिया ही नहीं देखी। समर्पित कर दो अपने को, जो तुम्हारी इच्छा, बोलो करेंगे भाई लोग, जो तुम्हारी इच्छा, हम उसमें ही राजी हैं। जितना अपनी इच्छाओं को कम करते जाएंगे सुखी होते जाएंगे। आजकल जमाना ऐसा हो गया है, संबंधों की कड़वाहट बहुत बढ़ती जा रही है, और इसका और कुछ कारण नहीं, कारण एक ही है, नहीं मैं तो है ही, और गहराई से चलेंगे, जब खेल चालू हो चुका है, सभी के कर्मों के हिसाब किताब अब जागृत हो रहे हैं। कोई लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा है, ये खूब चालू हो गया है, इसके कारण कड़वाहट बढ़ती जाती है। हमें सब कुछ स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो मैं बहुत भाग्यवान हूं जो भगवान का साथ मिला, इसको पक्का कर देना, मट्टी में पक्का करके जाना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं क्योंकि मुझे भगवान का साथ मिला, उसकी शिक्षाएं मिली। बहुत बड़ी चीज है ये। मनुष्य आत्मा जब एकदम नीचे उतर जाए, उसे फिर से पहली स्थिति पर ले जाना, भगवान के सिवाय किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। सोलह कला संपूर्ण बना देना, जिनकी कलाएं नष्ट हो गई, जिनके गुण नष्ट हो गए उन्हें सर्वगुण संपन्न बना देना, जो पांचों विकारों के अधीन हो गए उन्हें निर्विकारी बना देना, जो भारत बिल्कुल डाउन हो गया उसे फिर से सिरताज बना देना, ये एक के सिवाय कोई नहीं कर सकता। ठीक बात है ना? ऐसे भगवान का साथ हमें मिल रहा है। ले आओ इसको अपनी अंदर की फीलिंग में। हम उसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, उसने कह दिया मेरा सब कुछ तुम्हारा है, साथी बना लिया हमें। वो चाहे तो संसार को खुद ही बदल सकता है, पर कहा नहीं, तुम्हारे द्वारा मुझे अपने काम करने हैं, आ जाओ मेरे पास। मददगार बना लिया, हमें महान बनाने लगे, हमारे भाग्य को श्रेष्ठ करने लगे। तो हम इस बहुत अच्छी खुमारी में रहेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं। अब है स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन। फुल स्टॉप लगाना, वो तो टीवी में भी दिख रहा था, सबने हाथ उठा दिया था ना फुल स्टॉप लगाने पर। लगता किससे है? सभा में अगर 20,000 थे तो 20 भी नहीं होंगे, दो भी निकल जाएं तो बहुत अच्छा है। फुल स्टॉप लगाना, संकल्पों को शांत कर देना, वो भी जबरदस्ती नहीं। कैसे? ज्ञान योग स्वमान ऐसरीपन, अच्छा चिंतन, मुरली की बातें, उसके द्वारा मन की स्पीड को धीमा रखना। कार भी अगर 120 की स्पीड पे चल रही हो, तुरंत ब्रेक लगाएंगे? तुरंत ब्रेक लगा दिया तो 10 पलटे खाएगी। डाउन करनी होती है धीरे से, भले ही 5 ही सेकेंड लगे, 7 सेकेंड लगे, धीमे कर देना होता है। तो जो अपने मन की स्पीड को धीमा करते रहते हैं वो फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसमें ज्ञान का बल, स्वमान का बल, हमारी बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, हमारा मन सुंदर विचारों में रमण करता हो, तब ये स्पीड कम होती है, तब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो मुरलियों में आती रहती हैं, बातों में मनुष्य उलझा रहता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, बातें बड़ी हैं या बाप बड़ा है, लेकिन ये चीजें कहने से काम नहीं होगा, इनको बहुत गहरे चिंतन के साथ प्रैक्टिस में लाना होता है। जैसे बाबा की एक बात जो मुझे बहुत प्रिय लगी और मैं बहुत सुनाता हूँ, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हो। अभी इस पर काम करना पड़ेगा, रोज बातें रोज आती हैं जीवन में, हम ज्यादा सोचते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है बात होती ही नहीं, किसी ने आपको चुपचाप आके कह दिया फलानी बहन तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी और आपकी चालू हो गई और इतना चलने लगा खुशी गुम, और न जाने क्या क्या सोचने लगी, और एक दो घंटे के बाद पता चला कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो कैसा लगेगा? कितना सोच लिया मैंने, बात ही नहीं थी। अपने को देखने का मौका मिलता है। हमारा मन कैसे व्यर्थ को जल्दी ले लेता है, व्यर्थ पर जल्दी चलता है। समर्थ के लिए कहेंगे हमारा तो मनन चिंतन होता ही नहीं, और व्यर्थ के लिए मनन चिंतन बहुत होता है। होता है या नहीं? वो भी तो मनन चिंतन है या नहीं? वो भी मनन चिंतन ही है, लेकिन व्यर्थ की ओर तेजी से हम चलते हैं, समर्थ की ओर हमारे पास संकल्प ही नहीं होते। कहते होता ही नहीं मनन। तो अपने को बदलना है, स्वभाव संस्कार। मैं सभी को एक होमवर्क दे रहा हूं, बदलना तो है, हर व्यक्ति अपने को बदलना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है ब्राह्मण परिवार में जो अपने को बदलना ना चाहे। इसमें पहली चीज ये है कि हमें अपने संगठनों में, अपने परिवारों में दोष दूसरों को ही नहीं देना है। उंगली दूसरों की ओर नहीं, सदा तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा करती हो, तुमने ऐसे किया है। जो दूसरों की ओर उंगली करते हैं वो अपने को देखना भूल जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, हमें अपनी किसी विशेष कमजोरी का ज्ञान होना चाहिए। मैं देखता हूं कई लोग 10 साल से कहते आ रहे हैं हमें स्व परिवर्तन करना है, पर उन्हें ये पता नहीं कि क्या करना है, किस चीज को बदलना है और कैसे बदलना है। मैं एक दो बात आपको कहूं, बोलने के तरीके को बदलना है, सबको बदलना है। कहीं भी गड़बड़ होती है, बहुत थोड़ी आत्माओं ने अपने बोल को रॉयल बना लिया है, अधिकतर लोग बोल के मामले में फेल हैं। क्रोध को बदलना है। बाबा ने पीछे मुरली में हंसाया था, आपको याद हो, व्यक्त मुरली में, कईयों की आवाज तो वतन तक भी आती है, बाबा भी सुनते हैं। इतना भयानक रूप बना लेते हैं अपना, लड़ाई इतनी भारी हो जाती है कि भगवान का भी काम रुक जाता है, क्या हो रहा नीचे देखो तो सही। बोल बदलना, क्रोध बदलना, बहुत सारी चीज कही जा सकती हैं। आपको क्लासेज मिलेंगी भट्टी वालों को, देख लेना मुझे अपने को कहाँ बदलना है। फीलिंग ज़्यादा आती है, ज़्यादा सोचने की आदत है, दूसरों के अवगुण ही देखने की आदत है, या व्यर्थ बातें करने की आदत है, बातें फैलाने की आदत है। दूसरों की बातें मनुष्य फटाफट फैलाता है ना, अपना मुख्य काम समझता है। ये बात पता चली ना पड़ोसी की, 100 को तो पता चल जाना चाहिए, पत्रकार बन जाते हैं। और अपने घर में कुछ हो जाए, बोलो यहाँ तो चुप हो जाते हैं, वहां भी चुप हो जाते हैं। बाबा कहा करते थे, गलती कर दी किसी बच्चे ने, बच्ची ने, माँ अपने पति को भी नहीं बताती, इतनी समाने की शक्ति है। फिर भी लोग कहते हैं माताओं में समाने की शक्ति नहीं है, मैं नहीं मानता, समाने की शक्ति है। किस चीज की जरूरत है? संकल्प की। ये चीज मुझे समा लेनी है। कईयों की ऐसी दृष्टि होती है, किसी की हो तो बदल देना। मधुबन में आए हैं, भट्टी तो करेंगे ही, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं जनरल कह रहा हूं, लेकिन ये भी देखेंगे कहां क्या गड़बड़ हो रही है और फिर जाके बताएंगे, हम सब देखा है, वहां भी ऐसे ही है। 100 लोग अच्छे हैं वो उन्हें दिखाई नहीं देगी, एक कोई खराब उसकी ओर नजर जाती है, यहां सारे खराब हैं। ये भी गलत दृष्टिकोण। ये तो स्वर्ग है या नहीं? इससे पावन स्थान संसार में और कहीं नहीं है, ये अज्ञान सर और दो ऊपर के ये स्थान। ठीक है, सब जगह हल्के पुरुषार्थी, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये तो होता ही है, हमें इसमें साक्षी भाव भी धारण करना है। अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं लौकिक, एक दो टॉप क्लास होंगे, पांच सात फर्स्ट क्लास होंगे, 15-20 सेकंड क्लास होंगे, 15-20 थर्ड क्लास होंगे और 5-10 एक और क्लास है फेलियोर क्लास, वो भी होंगे असफल। वो सब जगह ऐसे ही चलता है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। तो अपने को चेक करेंगे, मेरा स्वभाव ऐसा तो नहीं है जो मुझे कष्ट दे रहा है और दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। ध्यान देंगे इस बात पर, पता होना चाहिए घरों में किसी को छोटी बातों में इरिटेट होने का संस्कार हो। इरिटेशन समझे, चिड़चिड़ापन। छोटी सी बीमारी आई, बीमारी छोटी सी, परेशान बहुत, जिसको कहते हैं आसमान ही सिर पे उठा लिया इसने तो। और किसी को बड़ी बीमारी है, शांत है। तो हमें पहले ये पता हो मुझे अपने में क्या चेंज लानी है। हर एक को, मेरे में अहम ज्यादा है, मैं दूसरों की बात को सम्मान देता हूं या नहीं, या यही सोचता हूं मैं ही राइट हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं, क्या कमी है मेरे अंदर, विचार में कमी, दृष्टि में कमी, सोचने में कमी, व्यवहार में कमी, क्रोध या बोलने का तरीका गलत, उसको बदलना है। अब बदलना कैसे है, बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दे दिया है उसके लिए। हमें बदलने के लिए योग की शक्ति भी चाहिए, इम्पोर्टेंट। बिना योग की शक्ति के कोई अपने को बदल नहीं सकता। नहीं तो क्रोध को बुरा तो शास्त्रों में भी माना है, काम महाशत्रु शास्त्रों के ही वचन हैं, लोभ पाप का बीज है ये शास्त्रों की बात है, लेकिन कोई इनसे छूट क्यों नहीं पाया, क्योंकि योग की शक्ति आत्मा में नहीं थी। अब बाबा ने योग की शक्ति दी है, हमें योग भी बढ़ाना है, लेकिन एक विशेष चीज जिसका सभी को अच्छा अभ्यास करना है और यहां से अच्छी तरह सीख कर जाएंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास। मेरा आदि स्वरूप क्या था, देवता, सामने लाओ, एक बार कर लेना रोज अच्छी तरह, आदि स्वरूप देव स्वरूप सामने ले आओ, ये था मैं, ये थी मैं, ये है मेरे असली संस्कार जो वर्तमान के हैं, ये असली नहीं है, बाबा के शब्द। और बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस सभी कर सकते हैं। बाबा ने कहा ये तो रावण की प्रॉपर्टी है, सुना है मैं तो। अब मैं आपको बाबा की एक और अच्छी बात बता रहा हूं, जिससे हम अपने में सहज परिवर्तन लाएंगे। क्रोध किसी को आता है, उसको छोड़ना है, पहले तो ये संकल्प हो कि मुझे पूरा छोड़ के निर्मल और पीसफुल शांत शीतल होना है। तो देखो, रोज सवेरे एक बार, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। 3 बार कर दो, जानते हैं हम सब, हमें ज्ञान है, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है, बदलने लगेगा, बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज को हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो हमसे दूर हो जाएगी, और जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमारे में आ जाएगी। तो हमने स्वीकार कर लिया, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति, रिजेक्ट कर दिया, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, करके देखेंगे सभी। दूसरी विधि, सवेरे ही ये काम पहले मिनट में कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, इसी स्पीड से करेंगे, जल्दी नहीं। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। बोल बदलना है, मैं इष्ट देवी हूँ, मेरे बोल वरदानी हैं, होने चाहिए नहीं, मैं इष्ट देवी हूँ, मेरे बोल वरदानी हैं, मैं इष्ट देवी हूँ, मेरी वृत्ति कल्याणकारी है। इष्ट देवी किसी का कल्याण नहीं चाह सकती ना, मेरी वृत्ति कल्याणकारी है। तो ये जो हमारे पांच स्वरूप है ना, इसमें दो पर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आदि स्वरूप भविष्य का नशा, और अपने इस देव देवी स्वरूप को भी लाना, मैं ये हूं और ये मेरे संस्कार हैं। चिंतन बहुत आवश्यक होता है, चिंतन के बिना धारणा नहीं होती। ब्रह्मा बाबा ने भविष्य के नशे की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की थी। जितना नशा ब्रह्मा बाबा को था भविष्य का, उतना किसी को हुआ ही नहीं। ठीक है, उन्हें पता भी था, लेकिन पता तो हमें भी है ना, हम देवता बनेंगे, अच्छे देवता, बड़े, कोई छोटे मोटे नहीं, हम भी उस नशे में आ जाएंगे तो संस्कार, वर्तमान संस्कारों को समाप्त करने लगेंगे। तो आप सभी आए हैं भट्टी में, खूब आनंद लेना, अपने को भरपूर करके जाना, अच्छा चिंतन लेकर जाना यहाँ से। ओम शांति।